नमस्कार भारत, तारीख 2 मार्च दिन बुधवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इम्तिहान। सुपर ट्यूसडे में 11 राज्य कर रहे हैं दोनों पार्टियों के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का फैसला।
The only campaign that is in a position to beat Donald Trump on Super Tuesday is our campaign. And if you don't want to
PF को लेकर टैक्स पर सरकार ने दी सफाई, लेकिन नौकरी पेशा लोगों की चिंताएं हैं बरकरार।
अगर ये हमारा पैसा है, अगर नहीं बल्कि हमारा पैसा है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग में एकांतिक रूप से सरकार इस पे कोई निर्णय ले, इस पे कोई राय मशविरा ना हो, ये तो बिल्कुल एक हमारे पैसे पे सेंधमारी है।
धर्मशाला में भारत पाक मुकाबले पर सियासत हुई तेज। बात एशिया कप की भी, जहां भारत पहुंचा है फाइनल में, पर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, अमल चौधरी से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जारी दौड़ में 11 राज्यों में वोटिंग हो रही है और इसे सुपर ट्यूसडे का नाम दिया गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार रिपब्लिकन की तरफ से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते दिख रहे हैं, तो वहीं डेमोक्रेटिक की तरफ से हिलेरी क्लिंटन। भारत सरकार ने बजट के दौरान एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF से पैसा निकालते समय उसके एक भाग पर कर लगाने की घोषणा की थी। इसका व्यापक विरोध हो रहा है और इसी कारण से सरकार ने मंगलवार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने कहा है कि PPF निकालने पर किसी तरह का कर नहीं देना होगा। बजट में जिस टैक्स की बात हुई है वो EPF से मिलने वाले ब्याज पर लागू होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार EPF पर टैक्स का प्रावधान 1 अप्रैल 2016 के बाद से किया गया है। रूस ने चेताया है कि कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट मध्य पूर्वी देशों के खिलाफ रासायनिक युद्ध छेड़ सकता है। जिनेवा में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि इस आशंका से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चरमपंथी पहले भी दिखा चुके हैं कि ऐसे हथियारों से क्या नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा, पिछले साल अगस्त और सितंबर में सीरिया के मारे शहर में IS के चरमपंथियों ने गोलाबारी की थी, जिसमें उन्होंने खतरनाक रसायन सल्फर मस्टर्ड का उपयोग किया था। वहां मौजूद रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन भी इस बात को मानता है कि स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि चरमपंथी अब रसायनों को अपना हथियार बना रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाए। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के शब्द। अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन की वसीयत से पता चलता है कि 2011 में अपनी मौत के बाद उन्होंने $2.9 करोड़ की निजी संपत्ति छोड़ी थी। अमरीकी सेना के विशेष अभियान में पाकिस्तान के अबटाबाद में लादेन मारे गए थे। मंगलवार को कुछ दस्तावेज अमरीकी मीडिया को जारी किए गए हैं, जिनमें लादेन की वसीयत भी शामिल है। एबटाबाद में अभियान के दौरान ये वसीयत बरामद की गई थी। इसमें लादेन ने अपने परिवार से कहा था कि मेरी इच्छा का पालन करना और अल्लाह की खातिर इस पैसे को जिहाद पर खर्च करना। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि हाल में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि ईरान की जनता बाहरी दुनिया से टकराव नहीं चाहती है। देश में पिछले हफ्ते हुए संसदीय चुनावों में उदारवादियों को कामयाबी हासिल हुई है। संसदीय चुनावों के बाद हसन रूहानी का ये पहला भाषण था। रूहानी का कहना था कि ईरान की जनता ने दुनिया को साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि वो अतिवाद की बजाय बीच के रास्ते और विरोध के बजाय मिलजुल कर काम करने में यकीन रखते हैं। एक अध्ययन में पहली बार इस बात के सबूत मिले हैं कि जीका वायरस के संक्रमण से गुलियन बारे सिंड्रोम नाम का तंत्र का विकार हो सकता है। BBC समाचार।
ये BBC है, आप सुन रहे हैं हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। हिलेरी क्लिंटन या फिर बर्नी सैंडर्स, डोनाल्ड ट्रंप या टेड क्रूज या फिर मार्को रूबियो, इस बात का फैसला अमेरिका के 11 राज्य सुपर ट्यूसडे में कर रहे हैं। सुपर ट्यूसडे हिंदी में कहें तो महामंगलवार, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ही इन बड़ी पार्टियों में उम्मीदवारी के दावेदार दम ठोक रहे हैं। कहां बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला कुछ समय बाद हो जाएगा। वैसे मुकाबला काफी सख्त है। सुनिए BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा अमल चौधरी से।
Trump. Who are you supporting?
Donald Trump.
चुनाव सर्वे तो यही दिखा रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी ही अभी सबसे मजबूत है और डेमोक्रेटिक पार्टी में हिलरी क्लिंटन। इन्हें उम्मीदवारी मिलने या ना मिलने का फैसला तो अभी बहुत दूर है। फिलहाल सुपर ट्यूजडे में अमेरिका के 11 राज्य अपने पसंदीदा उम्मीदवार का फैसला कर रहे हैं। ट्रंप पूरी कोशिश में हैं कि उनकी बढ़त बनी रहे। ओहायो में अपने समर्थकों के सामने उन्होंने फिर कहा कि वो अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें पूरे देश का साथ चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका में नौकरियों को बनाए रखने के लिए वो सब करेंगे जो शायद एक राष्ट्रपति नहीं करता। ट्रंप दरअसल कैरियर नाम की कंपनी की उस बात का जवाब दे रहे थे कि वो अमेरिका के बजाय मैक्सिको में नौकरियों के अवसर देगी। ट्रंप ने कहा,
So I have the big business leaders, the great business leaders, the people that made billions, they don't want money. We have political hacks doing our negotiations.
कई बड़े बिजनेस से जुड़े लोग मेरे साथ हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अरबों कमाए हैं, उन्हें पैसा नहीं चाहिए। हमारे पास कई राजनीतिक हथकंडे हैं काम निकलवाने के लिए और मैं ये खुद करूंगा। मुझे पता है कि ये काम एक राष्ट्रपति का नहीं है और मेरे विपक्षी भी यही कहेंगे, लेकिन मैं जब अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा तो उस कंपनी के मालिक को बुलाऊंगा और उन 1400 नौकरियों के बारे में पूछूंगा। ये काम राष्ट्रपति का नहीं है, लेकिन मैं ये करूंगा। क्या आप लोगों को इससे दिक्कत है? ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। वहीं ट्रंप के मुख्य प्रतिद्वंदी सेनेटर टेड क्रूज के लिए जरूरी होगा कि वो अपने गृह राज्य टेक्सस में जीत हासिल करें। अगर उन्हें ट्रंप को पछाड़ना है तो सुपर ट्यूजडे उनके लिए बहुत अहम है। ह्यूस्टन में उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की, अगर सुपर ट्यूजडे में डोनाल्ड ट्रंप को कोई हरा सकता है तो वो हम ही हैं। और अगर आप ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनते हुए नहीं देखना चाहते और अगर ये नहीं चाहते कि हम ये चुनाव हिलरी क्लिंटन के हाथों हार जाएं, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारा साथ दें। आपके पास सुपर ट्यूजडे के रूप में ट्रंप को हराने का एक बेहतरीन मौका है। ये थे टेड क्रूज के शब्द। अब तक जिन 4 राज्यों में प्राइमरी चुनाव या कॉकस बैठकें हुई हैं, उनमें 3 ट्रंप के हक में गए हैं, जबकि एक राज्य में टेड क्रूज को कामयाबी मिली। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी में हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि क्लिंटन जब मिनेसोटा में अपने समर्थकों को मुखातिब थीं, तो उनके निशाने पर रिपब्लिकन पार्टी थी। मैं केवल कट्टरता और लोगों को धमकाने के विरोध में बोल रही हूं और पिछले कुछ दिनों में मैंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के भाषणों में ऐसी बातें सुनी हैं। वो सभी मुद्दों को पूरी तरह भूल गए हैं और केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यवहार मान्य होना चाहिए। ये थी हिलरी क्लिंटन। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी की रेस में क्लिंटन अभी तक आगे हैं। उन्हें 3 राज्यों में जीत मिली है, जबकि 1 राज्य में सैंडर्स ने उन्हें पछाड़ा था। हालांकि बताया जाता है कि बहुत से युवा मतदाता सैंडर्स की तरफ खिंच रहे हैं, जो क्लिंटन की चिंता का सबब है। बहरहाल अब सबकी नजरें सुपर ट्यूजडे यानी महामंगलवार के नतीजों पर टिकी हैं।
बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा आपको सुना रहे थे अमल चौधरी। और अब सीधे रुख करते हैं वॉशिंगटन का, जहां से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। तो ब्रजेश जी, मुझे जैसा दिख रहा है अभी बीबीसी की अंग्रेजी की वेबसाइट पर, मैं देख रहा हूं कि क्लिंटन जॉर्जिया और वर्जीनिया में जीत जाएंगी, ऐसे प्रोजेक्शन है। और क्या कुछ प्रोजेक्शन सामने आ रहे हैं, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं?
देखें, अब से 1 घंटे पहले 3 राज्यों में मतदान खत्म हो गया था और वहां मतों की गिनती चल रही है, लेकिन एग्जिट पोल्स के आधार पर अमेरिकी मीडिया और समाचार एजेंसी एपी ने, जैसा कि आपने कहा, डेमोक्रेट्स में 3 में से 2 में हिलरी क्लिंटन और 1 में बर्नी सैंडर्स को विजेता घोषित किया है। माफ कीजिएगा, इन प्रोजेक्शंस के आधार पर हिलरी वर्जीनिया और जॉर्जिया में जीती है, वहीं सैंडर्स अपने गृह राज्य वर्मोंट में, जहां के वो सेनेटर हैं, वहां जीत गए हैं। और गौरतलब है कि वर्जीनिया और जॉर्जिया ये 2 राज्य हैं जहां 2008 में हिलरी बराक ओबामा के खिलाफ हार गई थी। वहीं रिपब्लिकन पार्टी में प्रोजेक्शन के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्जिया का विजेता घोषित किया जा रहा है और वर्जीनिया में वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अब जबकि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से कुछ ही मिनट पहले 4 और राज्यों में वोटिंग खत्म हुई और उनमें से अभी अमेरिकी मीडिया ने 2 में हिलरी क्लिंटन को और विजेता घोषित किया है, अलबामा और टेनेसी राज्य में। वहीं ट्रंप को अलबामा, मैसाच्यूसेट्स और टेनेसी, इन तीनों में विजेता घोषित किया गया है।
तो तेजी
कुल मिलाकर के अभी जितने परिणाम आए हैं, उनमें से 4 में हिलरी को विजेता घोषित किया जा रहा है, 1 में बर्नी सैंडर्स को, वहीं ट्रंप अपनी जहां जहां परिणाम आए हैं वहां उनमें से चार में वो विजेता घोषित किए गए
हैं। तो अभी तक के रुझान यही बता रहे हैं कि जिस तरह बढ़त क्लिंटन को है, जिस तरह बढ़त ट्रंप को है, वो अभी भी बरकरार दिख रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि चार राज्यों में प्राइमरी कॉकस चुनाव हो चुके हैं, 11 राज्य आज अपना फैसला सुना देंगे, तो कुल 15 राज्यों के बाद अब अगले मुकाबले, अगले पड़ाव कौन से होंगे इस प्रक्रिया के?
देखिए, अगले हफ्ते फिर 5 और राज्यों का में चुनाव है, लेकिन उसमें सबसे अहम है मिशिगन राज्य में, कि जहां डेलीगेट्स की संख्या काफी है और आज उम्मीद की जा रही है कि हिलरी क्लिंटन जब अपना भाषण देंगी तो उसमें हो सकता है मिशिगन के वोटरों की तरफ वो ज्यादा मुखातिब हो। दूसरा जो चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा वो 15 तारीख को, वो है फ्लोरिडा का, क्योंकि वहां भी जो डेलीगेट्स जो मिलते हैं इसमें जीतने के बाद उनकी संख्या काफी है। और आज आपको इसलिए हैरत नहीं होनी चाहिए कि आज हिलरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, टेड क्रूज ये सभी फ्लोरिडा पहुंच गए हैं और आज सभी अपनी जो जीत की रैलियां होंगी या अपने समर्थकों को जोश में बढ़ाने, जोश दिलाने के लिए जो रैलियां करते हैं वो फ्लोरिडा से कर रहे हैं, जिससे कि वहां के वोटरों के साथ भी उनका एक तरह का एंगेजमेंट कायम हो सके।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह अमरीका में जब तक राष्ट्रपति चुनाव नहीं हो जाते हैं सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर ऐसी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय वॉशिंगटन से।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख करते हैं भारत का। सोमवार को पेश बजट में भविष्य निधि से पैसे निकालने पर टैक्स लगाने के प्रावधान को लेकर विवाद पैदा हो गया। इस बारे में तीखे विरोध और विवाद के बाद अब राजस्व सचिव ने सफाई दी है कि पीपीएफ निकासी पर किसी तरह का कर नहीं लगेगा, पर ईपीएफ से अगर पैसे निकालते हैं तो टैक्स लगेगा, लेकिन मूलधन पर नहीं बल्कि उस पर मिलने वाले ब्याज की 60% हिस्से पर टैक्स देना होगा। उधर मीडिया में ऐसी चर्चाएं भी तेज हैं कि सरकार इस फैसले को वापस ले सकती है। हमारी साथी शिल्पा कन्नन ने वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से पूछा कि इस प्रावधान पर जो आलोचना हो रही है उस पर उनका क्या कहना है।
इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से विस्तार से व्यापक रूप से स्पष्टीकरण किया है। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को जो पेंशन प्लान्स हैं उनको बराबर लाना है। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एनपीएस है वो आज के समय बराबर नहीं है ईपीएफओ से, तो एनपीएस को और ईपीएफओ को हम लोगों को बराबर कर देना है। आपको ये भी समझना चाहिए कि पीपीएफ वाले लोगों को इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं, क्योंकि हम पीपीएफ की बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप ईपीएफओ में हैं और आज के समय ईपीएफओ में 3.7 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 3 करोड़ लोग जो हैं वो 15,000 से नीचे के हैं, जो 15,000 से नीचे की उनकी कमाई है हर महीने वो भी इससे प्रभावित नहीं है। सिर्फ वो लोग प्रभावित है, करीब 60 से 70 लाख लोग जो 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं, उनके लिए भविष्य में हम लोगों ने ये प्रस्ताव लाया है कि हम एक परिवर्तन लाएंगे और उस परिवर्तन पे अब काफ़ी चर्चा हो रही है। आपको मालूम है उस पे काफ़ी लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त की है। इसका एक कारण भी है, हम लोग जैसे मैंने पहले ही कहा, कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आप एनपीएस लें या आप ईपीएफओ लें, आपको कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, और इस कारण हम लोगों ने ये परिवर्तन पेश किया है।
आपकी सरकार रिफॉर्म्स की बात कर रही है लेकिन सब्सिडी भी दे रही हैं, क्या इसे एक चुनावी बजट कह सकते हैं? यूपी और पंजाब सामने हैं, आप इससे सहमत हैं?
चुनाव तो बहुत दूर हैं, हमारी कोशिश है और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दें, मतलब इंडिया में बिल्कुल एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं, और उसी लक्ष्य से हमारी कोशिश है, चाहे वो आप रूरल इकोनॉमी देख लीजिए या आप अर्बन इकोनॉमी देख लीजिए, यानी कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है या जो शहरी अर्थव्यवस्था है, दोनों में हम लोग बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों में हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम, चाहे आप शहरी नज़रिए से देखें या ग्रामीण नज़रिए से देखें, आपको इस बजट में ज़रूर दोनों क्षेत्रों में आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, बहुत कुछ हम लोगों ने सुधार लाया है।
तो आपके असेसमेंट से आप खुश हैं ये बजट से जो, या और करना चाहते थे?
खुश तो आप लोगों को होना है, हमारी तरफ से तो हम बस मेहनत कर सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं।
ये थे वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, जिनसे बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता शिल्पा कन्नन। वैसे सरकार ने भविष्य निधि यानी पीएफ को लेकर भले ही सफाई देने की कोशिश की हो, लेकिन आम नौकरी पेशा लोगों में इसे लेकर चिंता बनी हुई है। हमने बात की कुछ नौकरी पेशा लोगों से।
अगर ये हमारा पैसा है, अगर नहीं बल्कि हमारा पैसा है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग में एकांतिक रूप से सरकार इस पर कोई निर्णय ले, इस पर कोई राय मशविरा ना हो, ये तो बिल्कुल एक हमारे पैसे पे सेंधमारी है। दूसरे, सामाजिक सुरक्षा के नाम पे हम इसको सिर्फ और सिर्फ किसी एन्युटी फंड में डालें, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प सरकार नहीं दे रही है। ये एक एक तरह से हमारे हमारी आर्थिक आज़ादी पे रोक लगाना है, ये तो मेरा ख्याल है नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इतनी ही चिंता है सरकार को हमारे भविष्य की या हमारे सामाजिक सुरक्षा की, हमारे बुढ़ापे की, तो उसको और भी विकल्प हमें देने चाहिए थे या विकल्प वो सुझाती।
देखिए, फ्यूचर प्लानिंग पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर तो पड़ना ही है, क्योंकि हम लोग उस पैसे को बिल्कुल सोचते हैं कि सेफ मनी है, और सेफ मनी है और बुढ़ापे का सहारा है वो वही मनी, क्योंकि अभी की जो सामाजिक व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा ना बदल गई है कि बच्चों पर पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को तो ज़रूर कचोट रहा है, बहुत ज़्यादा कचोट रहा है, क्योंकि अब ये टैक्स अमाउंट तो नहीं पता है, लेकिन जो भी हो टैक्स तो लगना ही है, तो कचोट तो हम लोगों को है ही।
भविष्य निधि पर टैक्स लगाने की कोशिशों से आम लोग हैं परेशान, बता रहे थे कुछ लोग अपनी व्यथा। और बात करते हैं अब उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, जहां T20 विश्व कप श्रृंखला में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लगातार विवाद तेज हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि पूर्व सैनिक धर्मशाला में ये मैच नहीं कराना चाहते हैं। राज्य सरकार ने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को चिट्ठी लिखकर मैच न कराने को कहा है, लेकिन BCCI के सचिव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर इसे राज्य में कांग्रेस सरकार की नाकामी बता रहे हैं।
विश्व कप के मैचेस की अलॉटमेंट कई महीने पहले तय होगी। विश्व कप के मैचेस को लेकर पूरी दुनिया भर के लोग और मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग फिक्स्चर्स के अकॉर्डिंग अपनी बुकिंग करवाते हैं, आते हैं, और आने के लिए सारी सुविधाओं का प्रावधान किया जाता है। अंतिम समय में आकर अपनी नाकामयाबी बताना कि हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, इससे प्रदेश का नाम बदनाम होगा।
देश का नाम बदनाम होगा, कह रहे थे BCCI के सचिव अनुराग ठाकुर, लेकिन राज्य सरकार अपने फैसले पर अड़ी है, मैच न कराने के फैसले पर अड़ी है। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और पूछा कि उनकी आपत्ति किस बात को लेकर है।
कारण ये है कि अभी एक महीना पहले हिमाचल के सपूत आतंकवाद का शिकार हुए और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर आतंकवाद जब तक बंद नहीं किया जाता, हम कैसे ये मैच कहा जहां वीरों की धरती हो और जहां हमारे शहीद जो वीर साथी है वो शहीद हो रहे हों, और उस समय अनुराग ठाकुर जी देश प्रेम की भावना की बात करते हैं और इस प्रकार का मैच करवा रहे हैं, उसका पार्टी भी विरोध कर रही है, सरकार भी विरोध कर रही है और प्रदेश की जनता भी विरोध कर रही है।
जो BCCI के सेक्रेटरी हैं और BJP के MP हैं अनुराग ठाकुर, उनका कहना है कि एक साल पहले ही वेन्यू डिसाइड हो जाता है, लोग टिकटें ले लेते हैं, और इस तरह से ये एक तरह से राज्य सरकार की नाकामी को ही दर्शाता है कि वो सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रहा है।
देखिए, 10 मैच हो रहे हैं धर्मशाला में, 10 में से 9 मैच में हमने कहा है कि हिमाचल की जनता उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, सारे जितने भी मैच हो उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां जाएं। सिर्फ एक मैच ऐसा है, गृह मंत्रालय जी राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी है कि इसका स्थान, सिर्फ एक मैच का जो स्थान है वो स्थानांतरण कर दिया जाए। तो इस बारे में अनुरोध किया गया, अनुराग ठाकुर जी राजनेता भी है, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ अगर होगा और जनता अगर आक्रोश में होगी तो जन निश्चित रूप से वो उन्माद बनकर उभरेगा।
कौन लगता कि ये कला और खेल ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राजनीति नहीं आनी चाहिए और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जहाँ खेल है, जहाँ कला है, जहाँ साहित्य है, हमें उन चीजों पर राजनीति नहीं लानी चाहिए। लेकिन अनुराग ठाकुर जी को ये बात सोचनी है कि जहाँ खेल प्रेमी 10 में से 9 मैचों का विरोध नहीं कर रहे हैं, एक मैच का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, ये चीज अनुराग ठाकुर जी को सोचनी चाहिए। वो हिमाचल प्रदेश के राजनेता है, हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें इस मैच को रद्द करवा के कहीं और करवाना चाहिए।
सरकार अपने रुख में बदलाव अगर नहीं लाती है, आप लोग क्या करेंगे?
प्रदेश कांग्रेस कमेटी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में धरना देगी। हरे आने वाले समय के लिए इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है और एक दो दिन में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। भारी संख्या में लोगों को इस मैच में रुकवाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, जागृत करेंगे।
ये थे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सक्खू, जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होने दिया जाएगा। और उनसे बात कर रही थी हमारे साथी सुशीला सिंह।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड, यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और इसके बाद कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं उस पड़ाव पर जहां हम आज छपने वाले तमाम अखबारों की समीक्षा करते हैं। अखबारों में क्या कुछ छपा है, क्या सुर्खियां हैं, लेकर मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में अमल चौधरी। अमल, अखबार क्या कह रहे हैं?
अशोक, बजट कल भी सुर्खियों में था और आज भी वही सुर्खियों में है। आपको पता ही है
पीएफ को लेकर बहुत लोग परेशान हैं।
बिल्कुल, सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के 60% हिस्से पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था और उसकी खासी आलोचना भी हुई थी। और इसके बाद सरकार ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव पर दोबारा गौर करेगी। और सभी अखबारों में लगभग एक जैसी, हाँ, मैंने शीर्षक देखा है कि ईपीएफ टैक्स पर फंसी सरकार, ईपीएफ पर टैक्स वापस होगा। लेकिन नवभारत टाइम्स का जो शीर्षक है मुझे काफी अलग सा लगा, बार लिखता है कि रिटायर्ड हर्ट हो गया ईपीएफ टैक्स,
क्रिकेट से जोड़ दिया।
जी बिल्कुल, सो क्रिकेट से जोड़ दिया इन्होंने। और अन्य खबरों की बात करें तो
और मुझे यकीन है कि इसके कहीं बगल में कहीं ना कहीं एशिया कप की खबर भी लगी होगी।
बिल्कुल, वो एक लंबी सी उसमें लगी हुई है, उसमें इंडिया का भी जो मैच वो आया है
और जैसे फाइनल में पहुंची
है। जी बिल्कुल, फाइनल में पहुंच चुकी है। और अन्य खबरों की बात करें तो उसमें इशरत जहां के विवादास्पद एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। हिंदुस्तान हिंदी के अनुसार हेडली की गवाही से जो तथाकथित जो तथ्य सामने आए हैं उसके नज़र याचिका दायर की गई थी और इस पर अब सुनवाई होगी। और अमर उजाला की खबर के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने प्रदूषण फैलाने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करने की बात की है। इसमें 2000 वर्ग मीटर से ज़्यादा में निर्माण करने वालों पर जो हैं वो रडार पर रहेंगे। अशोक, इसमें आए दिन अलग अलग तरह के सर्कुलर जारी होते हैं, इसमें कहते हैं कि सख्ती बरती जाएगी, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण पर इतना ज़्यादा रोक लगती दिखती नहीं है।
जी वाकई, प्रदूषण एक बड़ी चिंता है और बार बार इसका उल्लेख जिस तरह अदालतें सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, और पिछले दिनों अदालत ने यहां तक कहा कि दिल्ली तो एक गैस चैम्बर जैसी ना हो जाए, और जिसके बाद इवन ऑड की योजना लागू की गई, हालांकि वो कितनी सफल रही कितनी नहीं उस पर सवाल हो सकते हैं। उसके आलोचक और उसके समर्थक अलग अलग दावे करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस हमें नहीं दिख रहा है। और जिस तरह की समस्या है, जिस तरह की अदालत का रुख है, उससे पता चलता है कि समस्या कितनी विकराल है।
जी बिल्कुल। और दैनिक भास्कर में JNU विवाद से जुड़ी एक खबर है जिसके अनुसार दो वीडियो में गड़बड़ी पाई गई है। इसमें दिल्ली स्थित फॉरेंसिक लैब की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जो लोग वीडियो में नहीं भी दिख रहे हैं उनकी आवाज़ इसमें जोड़ दी गई। देखिए, ये एक और खबर है जिसमें पुलिस कभी कुछ कहती है, कोर्ट पुलिस की कभी खिंचाई करती है, आए दिन इसमें कुछ एक नए नए कुछ ना कुछ निकल के सामने आता ही जा रहा है इसमें।
कई बार तो लोग पुलिस के झांसे में फंसते हैं, यहाँ लग रहा है पुलिस ही फंस गई।
पुलिस फंसती जा रही है आए दिन। कोर्ट ने भी उससे पूछा है कि आपको क्या पता है देशद्रोह कानून आखिर होता क्या है, कोर्ट ने उनसे पूछा है। और आज उस पर सुनवाई भी होनी है उनके, उस पर वो फैसला सुनाएंगे उनकी जमानत पे की जो अर्जी है कन्हैया पे। जी, और वहीं हिंदुस्तान हिंदी की खबर है जिसके अनुसार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विशेषाधिकार हनन नोटिस लाया जाएगा।
कल काफी इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में तकरार रही, अगले कार्यक्रम में हम रिपोर्ट भी पेश करेंगे वैसे इस बारे में।
राज्यसभा में जहां कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया तो वहीं लोकसभा में भाजपा ने सिंधिया के खिलाफ इस पे प्रस्ताव पेश किया।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब चलते हैं खेलों की तरफ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। बांग्लादेश में खेले जा रहे एशिया कप 2020 टूर्नामेंट में कल भारत ने पिछले चैंपियन श्रीलंका को 5 विकेट से मात दी और इसके साथ ही फाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली। भारत के सामने जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य था जो उसने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की जीत के नायक रहे विराट कोहली जिन्होंने 47 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से नाबाद 56 रन बनाए। विजय चौका भी उन्हीं के बल्ले से निकला।
मैच कौन खत्म करता है? विराट कोहली, एक बाउंस चौका, भारतीय टीम ने जगह बना ली है फाइनल्स में एशिया कप 2016। 3 मैचेस 3 जीत और तीनों बहुत ही जबरदस्त जीत।
इससे पहले एक समय भारत ने रोहित शर्मा और शिखर धवन के विकेट केवल 16 रन तक खो दिए थे, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और सुरेश रैना के बीच तीसरे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी हुई। सुरेश रैना 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जलवा दिखाया युवराज सिंह ने। उन्होंने पहले तो रंगना हैरत पर 2 छक्के उड़ाए और फिर तेजी से केवल 18 गेंदों पर 33 रन बनाकर मैच भारत की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के जमाए। बाकी का काम भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पूरा किया। उन्होंने आते ही छक्का मारा, वो 7 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 138 रन बनाए। एक समय तो श्रीलंका के 3 विकेट 31 रन तक गिर चुके थे, जिनमें विकेटकीपर दिनेश चांदीमल, शेहान जयसूर्या और तिलक रत्न दिलशान के विकेट शामिल थे। दिलशान 18 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने।
हार्दिक पांड्या ने डाली बाउंसर और दिलशान का छोटा सा यहां स्टे हुआ समाप्त। 18 पर आउट अश्विन ने कैच पकड़ा। 31-3 श्रीलंका।
इसके बाद चमारा कपुगेदरा ने 30 और बिलिंदा श्रीवर्धने ने 22 रन बनाकर पारी को संभाला, तो अंत में थिसारा परेरा ने केवल 6 गेंदों पर 17 और नुवान कुलासेकरा ने 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर श्रीलंका को 138 रन तक पहुंचाया। भारत के आर अश्विन ने 26 रन देकर 2, हार्दिक पांड्या ने 26 रन देकर 2 और जसप्रीत बुमराह ने भी 27 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। आज एशिया कप में पाकिस्तान का सामना मेजबान बांग्लादेश से होगा। वहीं कुआलालंपुर में आयोजित की जा रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कल भारतीय पुरुष टीम नाइजीरिया से 3-0 से हार गई। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने लगातार 2 जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ भारतीय महिला टीम पुर्तगाल को 3-0 से हराने में कामयाब रही।
और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज रह सकती हैं सुर्खियों में।
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 29 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का आदेश दिया था। भारत आज 18 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के सदस्यों के साथ पहला व्यापक सैन्य अभ्यास करेगा। पुणे में शुरू होने वाले इस अभ्यास का नाम फोर्स 18 रखा गया है। 8 मार्च तक चलने वाले इस अभ्यास में चीन, अमेरिका, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया समेत अन्य देश हिस्सा लेंगे। भारत में आज से ज्वेलर्स देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के अनुसार 1% एक्साइज ड्यूटी को दोबारा लागू करना और 2 लाख से ऊपर के गहने की खरीद पर पैन कार्ड को अनिवार्य करना गलत है। ये प्रदर्शन 5 मार्च तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो यूरोपियन संघ के मानवीय सहायता कार्यक्रम के प्रमुख क्रिस्टोस स्टाइलिंडिस आज ईयू से जुड़े देशों के लिए आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा करेंगे। अप्रवासियों की समस्या से बेहतर तरह से निपटने के लिए ये पैकेज दिया जा रहा है। उधर एशिया कप में आज बांग्लादेश की टक्कर पाकिस्तान से होगी। बांग्लादेश इस वक्त अपने 3 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, तो वहीं पाकिस्तान 2 में से 1 मैच जीतकर 4थे स्थान पर। प्रो कबड्डी लीग में आज 2 मैच होने हैं। पहला मैच पुनेरी पल्टन्स और बंगाल वॉरियर्स के बीच शाम 8 बजे से शुरू होगा। वहीं दूसरे मैच में यू मुंबा और दबंग दिल्ली आपस में रात 9 बजे से भिड़ेंगे।
और कार्यक्रम के समापन से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जारी दौड़ में 11 राज्यों में वोटिंग हो रही है और इसे सुपर ट्यूसडे का नाम दिया गया है। भारत सरकार ने बजट के दौरान एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ से पैसा निकालते समय उसके एक भाग पर कर लगाने की घोषणा की थी। इस बारे में सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पीपीएफ निकालने पर किसी तरह का कर नहीं देना होगा। रूस ने चेताया है कि कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट मध्य पूर्वी देशों के खिलाफ रासायनिक युद्ध छेड़ सकता है। जिनेवा में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा कि इस आशंका से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल की ज़रूरत है। अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन की वसीयत से पता चलता है कि 2011 में अपनी मौत के बाद उन्होंने $2.9 करोड़ की निजी संपत्ति छोड़ी थी। एबटाबाद में अभियान के दौरान ये वसीयत बरामद की गई थी। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि ईरान की जनता बाहरी दुनिया से टकराव नहीं चाहती है। देश में पिछले हफ्ते हुए संसदीय चुनावों में उदारवादियों को कामयाबी हासिल हुई थी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अभी के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। आपसे अगली मुलाकात हो रही है एक घंटे बाद, कार्यक्रम होगा विश्व भारती। तब तक अशोक कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार।